प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु तेरा प्यार कितना सुंदर है, कितना मधुर है। यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सब के लिए यह अध्ययन आमोस नबी की पुस्तक से अंतिम अध्ययन होगा और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि अब तक प्रभु आपने अध्ययन करने में हम सब की सहायता की है। आमोस नबी की पुस्तक के द्वारा से आपने हमें सिखाया है कि इसराइलियों से आपने प्रेम किया, उन्हें बार बार मौका दिया ताकि वे आपके वचन को सुनकर आपकी ओर फिर जाएं, और आपने उनके जीवन को बचाने का यत्न किया। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आज जब हम फिर से इस अध्याय के अंतिम पदों को देखते हैं, विनती है प्रभु कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि वे आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में उसे ग्रहण करने पाए, समझने पाए, अपने आप को जांचने पाए, वचन के प्रकाशन में देखने के लिए आप सबकी सहायता करें। जो इस घड़ी बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उनके लिए भी प्रार्थना है, आप उन्हें शांति दे, छुटकारा दे और चंगाई दे। आज के अध्ययन पर अपने विशेष आशीष प्रदान कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर से बचना असंभव है। जी हां, आकाश में उड़ जाओ, किसी भी ऊंचाई को छू लो, अधलोक में उतर जाओ, समुद्र के तल में आप छिप जाओ, गुफाओं में घुस जाओ, शत्रुओं के पास चले जाओ, परमेश्वर से बचना संभव नहीं है। परमेश्वर के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघल जाती है, वह आकाश में अपना निवास स्थान बनाता है और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है, वह समुद्र का जल पृथ्वी पर बहा देता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसकी दृष्टि से बचना असंभव है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 8 पद में हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु ने कहा था कि वह कल, आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर की संतान के लिए यह एक महान बात है, क्योंकि वह विश्वासियों से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय, जो इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है, और उसके 3 पद को पढ़ें। 9 अध्याय के 3 पद में लिखा है, चाहे वे कर्मेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरे दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। यहां पर लिखा है, चाहे वे कर्मेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। आज कर्मेल पर हाइका नगर बसा हुआ है। पर्वत कार्मेल पर पेड़ों की भरमार है और उसकी ऊंचाई लगभग 1800 फुट की है। उस पहाड़ में गुफाएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र की ओर उस पहाड़ में 1000 गुफाएं थी। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें वहां से भी खोज निकालेगा। यदि वे समुद्र के तल में भी चले जाएं, तो परमेश्वर से बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर से बचना असंभव है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर आपको ढूंढ निकालेंगे। आगे हम पढ़ते हैं आमोस 9 उसके 4 पद में, और चाहे शत्रु उन्हें हांक कर बंधुआई में ले जाएं, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हांक कर बंधुआई में ले जाएं, यदि वे जान बचाने के लिए बंदी बन जाएं, तो भी वे परमेश्वर के दंड से नहीं बचेंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर से डरना और भविष्य के बारे में भयभीत रहना दुष्टों के लिए अच्छा ही है, उनके लिए बचने का कोई मार्ग नहीं है। यदि कोई सोचे कि आत्महत्या करके वह परेशानियों से बच जाएगा, तो वह परमेश्वर के समक्ष और अधिक परेशानी में पड़ जाएगा, क्योंकि वह आग में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है। आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिश्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है और घट जाती है। मेरे प्रियो, आप आज उस देश को देखें तो तो निश्चय ही कहेंगे कि वह दूध और शहद का देश नहीं है। उसकी खेती और सिंचाई की व्यवस्था के उपरांत भी वह दूध और शहद का देश नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर के दंड के अधीन है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वहां उनकी भेंट एक यहूदी दंपति से हुई। वे मकान खरीदने वहां आए थे। वे सेवानिवृत्त के बाद वहां रहना चाहते थे या कम से कम छुट्टी मनाने वहां आना चाहते थे। उसने स्पष्ट कहा, यद्यपि मैंने अपने लोगों की सहायता हेतु यह घर खरीद लिया है, मैं इसमें रहना नहीं चाहता हूं। यह वह देश नहीं है जिसकी चर्चा बाइबल करती है। स्पष्ट है कि उसने भविष्यवाणियां नहीं पढ़ी थी। उसने आमोस की पुस्तक पढ़ी होती तो जान लेता कि वह देश परमेश्वर का दंड भोग रहा है। तब हम आगे पढ़ते हैं आमोस 9 अध्याय के 6 पद में, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नेव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। आमोस अपने लोगों को परमेश्वर की सर्वशक्ति का स्मरण करवाता है। वह सर्वव्यापी है, वह सर्वशक्तिमान भी है। आकाश में सूर्य, चांद, ग्रह, आकाश गंगाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड परमेश्वर की आज्ञा मानता है। परमेश्वर ने नियम बनाए हैं और वे उन नियमों का पालन भी करते हैं, परंतु यह अकिंचन मानव सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विद्रोह करता है। आमोस पूछता है, तुम सोचते हो कि ऐसे परमेश्वर से बच पाओगे जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता है और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है और समुद्र का जल पृथ्वी पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। आमोस 9 अध्याय उसके 7 पद में आगे हम पढ़ते हैं, हे इसराइलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लेखे कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इसराइल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं लाया? यहां पर कहता है कि कीर से नहीं लाया। परमेश्वर उन पर अपना प्रेम प्रकट करने के लिए कहता है कि वह उन्हें कुशियों के समान प्रेम करता है। 1935 में जब इटली के मुसोलिनी ने आक्रमण किया था, तब उनके विषय में बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया गया। मैं परमेश्वर की योजना में कूस अर्थात इथोपिया का स्थान देखकर आश्चर्य में पड़ गया। हमारे लिए वह देश छोटा सा है, परंतु परमेश्वर के लिए उसका महान महत्व है। आमोस 9 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। यहां पर लिखा है पापमय राज्य अर्थात इसराइल, मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा। राष्ट्र रूप में वे समाप्त हो जाएंगे और पुनः स्वदेश लौटने पर वे पूरी 12 गोत्र एक साथ होंगे। वे दाऊद की सिंहासन पर विराजमान एक ही राजा के अधीन होंगे। आमोस 9 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मेरी आज्ञा से इसराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है कि इसराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चला जाता है। आज वे संपूर्ण विश्व में तितर बितर हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वे खोए हुए नहीं हैं। उसका एक भी पुष्ट दाना पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं खोएगा। तब हम आगे पढ़ते हैं आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 10 पद में, मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। पापियों का क्या होगा? वे मरेंगे। जो परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे उन्हें परमेश्वर अवश्य ही दंड देगा। ऐसा ही कलीसियाओं में भी है। कलीसिया के सब सदस्यों को उद्धार प्राप्त नहीं है। वे सब कलीसिया के सदस्य तो हैं, परंतु सच्चे विश्वासी नहीं है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय के 6 पद में पौलुस कहता है, जो इसराइल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं। इसराइली दो प्रकार के हैं, जन्मजात इसराइली और आत्मिक इसराइली। एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। देश के हर एक पापी का नाश होगा। जी हां, विशेष करके वे दुस्साहसी जिन्हें आमोस संबोधित कर रहा है। यह आमोस का अंतिम दर्शन है जिसमें परमेश्वर के राज्य का विश्वव्यापी पुनरुद्वार होगा। आमोस दंड के भयानक समय और इसराइल के विस्थापन के पार देख रहा था, जो भावी महाक्लेश के परे है। आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। यहां पर लिखा है उस समय, इसराइल के अंतिम दिन, उस समय मैं इसराइल की गिरी हुई झोपड़ी खड़ी करूंगा। इसको समझने के लिए प्रेरितों के काम अध्याय 15 में आमोस की इसी भविष्यवाणी को याकूब के मुख से सुने। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने नाम के निमित्त अन्य जातियों से मनुष्य को बुला रहा है। इसके बाद वह दाऊद का गिरा हुआ डेरा खड़ा करेगा। वह प्रभु राज के विषय में कह रहा है। यह महान युग भविष्य का समय है। आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है, बहुत सी जातियां प्रभु राज में प्रवेश करेंगी। तब हम आगे पढ़ेंगे आमोस 9 अध्याय के 13 पद में, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। यह एक प्रमाण है कि जब इसराइल परमेश्वर से आशीष पाएगा तब वहां की भूमि भी आशीषित होगी। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि जब इसराइल स्वदेश लौटेगा अर्थात जब परमेश्वर उन्हें लौटा लाएगा तब वह देश फिर से दूध और शहद का स्थान होगा। आज उस देश में दूध और शहद की नदियां नहीं बहती हैं। अतः मैं कहता हूं कि आज यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। यद्यपि यहूदी अपने देश लौटकर आ रहे हैं वे परमेश्वर की ओर नहीं लौट रहे हैं। फर्क यही है कि वे अपने देश में तो आ रहे हैं परंतु परमेश्वर की ओर मन फिराकर नहीं लौट रहे हैं। आमोस आगे कहता है 9 अध्याय उसके 14 पद में, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पियेंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। जब परमेश्वर इसराइल का पुनरुद्वार करेगा तब न तो उत्तरी राज्य होगा और न दक्षिणी राज्य होगा, वह संपूर्ण देश अविभाजित इसराइल होगा। वहां 12 गोत्र होंगे। आज ये सब जातियों में बिखरे हुए हैं। यदि कोई किसी देश को उन 10 गोत्रों से जोड़े तो वह धर्मशास्त्र संबंधित तर्क नहीं है, क्योंकि वे संगठित नहीं विसर्जित हैं। मैं अपनी प्रजा इसराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वह यही कहता है। आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, जो इस पुस्तक का अंतिम पद है। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वह कहता है कि वे फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा, तब उन्हें हिलाने वाला कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर उनके लिए जो करेगा वह ये है। आइए हम देखें। पहली बात होगा कि वह दाऊद का राजवंश फिर से स्थापित करेगा। तो वह राजा कौन होगा? दाऊद की संतान कहलाने वाला प्रभु यीशु। और दूसरी बात होगी, इसराइल विश्व के मान्य देशों में से एक होगा। उस समय उसे संयुक्त राष्ट्र संघ और अरब देशों की चिंता नहीं होगी। वह परमेश्वर की आशीषों से संपन्न एक राष्ट्र होगा, जिसका सम्मानित स्थान विश्व के राष्ट्रों में होगा। और तीसरी बात, संसार की सब जातियों में मन फिराव होगा, परंतु ऐसा तब होगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी। मसीह की ओर फिरने का समय अभी भविष्य की घटना है। यह कब होगा? जब परमेश्वर इसराइल को स्वदेश स्थापित करेगा। चौथी बात हम देखते हैं कि वे उजड़े हुए नगर पुनः बसाएंगे। अब हम पांचवी बात देखते हैं, जो पांचवी और अंतिम बात है, कि वे अपने बगानों के फल खाएंगे और अपनी दाख का दाख मधु पिएंगे। देश पर से श्राप हट जाएगा और विपुल पैदावार होगी और वे फिर कभी उजाड़े ना जाएंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इसराइलियों के लिए इन सारी बातों को भविष्य की बातों के रूप में रखा है, क्योंकि जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है तो निश्चित रूप से बड़े अद्भुत रीति से कार्य करता है। और यहां पर जो हमने पांच बातों को देखा है कि किस प्रकार परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा जब वे अपने देश अर्थात स्वदेश लौट आएंगे, उनका एक राजा होगा जो प्रभु यीशु होगा, और इतना ही नहीं, वे अपने नगर में आएंगे और फिर से उसे बसाएंगे और वहां के फल और दाख मधु का वे आनंद लेंगे। आज बहुत सारे इसराइली यहां वहां भटके हुए हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें फिर से एकत्रित करेगा। मेरे मित्रों, आज हम सबके जीवन के लिए भी अति आवश्यक है कि हम भी अपने जीवन को देखें कि हम कहां पर बिखरे हुए हैं, हमारे जीवन किस प्रकार के जीवन है। क्या आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन के अंदर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है? यदि हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हमारा जीवन परमेश्वर के पास आने का समय है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं, क्योंकि लिखा है कि शांति का राजकुमार वही है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने हमें कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार तुम्हें देता है मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। परमेश्वर आपको, मुझे, हर एक मनुष्य को शांति और आनंद देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, और इसराइलियों की तरह वह मुझे और आपको भी बार बार मौका देता है, अवसर देता है, ताकि हम उसकी ओर फिर जाएं, उसके निकटता में आ जाएं। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। आज यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो अपने जीवन पर झांक करके देखें कि आप कहां हैं। आमोस नबी की पुस्तक को हमने अध्ययन किया है, एक अध्याय से लेकर के आज के इस आखिरी अध्याय तक को हमने देखा है। इसराइलियों के जीवन को देखा है, उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर के श्राप को देखा है, पड़ोसी देशों के ऊपर श्राप को देखा है, और परमेश्वर ने उन्हें बार बार मौका दिया ताकि वे सुधर जाएं। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी यह अवसर देता है कि हम उसकी निकटता में आ जाएं। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आज आपका जीवन क्या है, लेकिन आज मैं आपसे यही कहता हूं कि अपने आप को वचन के प्रकाशन में हम देखें, ताकि हम अपने आप को देखने पाए कि हम कहां पर हैं। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके सारे आशीषों के लिए, इस वचन के लिए जिसे उसने हम सबों को अध्ययन करने में मदद किया। आइए हम इस अध्याय का समापन इस प्रार्थना के साथ करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए, और विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं आमोस नबी की पुस्तक के लिए, जिसके माध्यम से प्रभु आपने हम सबसे बातचीत की है। आपने हमें भी सिखाया है जिस प्रकार से आपने इसराइलियों से प्रेम किया और उन्हें बार बार मौका दिया। आज आप हमसे भी प्रेम करते हैं, हमें भी मौका देते हैं ताकि हम आपकी ओर फिर जाएं। हमारे जितने भाई बहन, माता पिता, बच्चे जो आपके वचन को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें भी मौका दें ताकि वे आपकी ओर फिरें और उस उद्धार के आनंद को प्राप्त कर सकें जिसे आप उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनकी कलीसियाओं में देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पुस्तक का अध्ययन करने में मदद किया है। जब हम अगले अध्ययन में नए पुस्तक के साथ में अध्ययन आरंभ करते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार।